نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم الحمد للہ اللہ کی توفیق سے انشاء اللہ تعالی سورہ آل عمران مکمل کریں گے، آیت نمبر 186 سے 200 تک. دیکھتے ہیں آج کی آیات. اس سے پہلے آپ نے پچھلی آیات پہ غور و فکر کیا؟ آپ میں سے کوئی گیا سمندر پہ اور جا کے انگلی ڈبو کے دیکھی یا نہیں؟ میں نے آپ کو ایک پریکٹیکل دیا تھا یہ کرنے کو، کہ آپ نے انگلی ڈبو کے دیکھنی ہے کہ کتنا پانی آپ کی انگلی پہ لگا رہ جاتا ہے. ویسے تو آپ شاید اس کو اتنا معمولی سمجھیں کہ یہ کون سی ایسی بات ہے، ہمیں پتہ ہی ہے کتنا پانی لگ جاتا ہے، لیکن نہیں، وہ جب آپ پریکٹیکل کرتے ہیں نا تو اس کا کوئی الگ ہی افیکٹ ہوتا ہے. وہ گھر بیٹھے اس طرح سوچنے سے نہیں آئے گا. اور پھر اس کے بعد جب آپ نظر دوڑائیں گے سمندر کی طرف، جس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آتا، سمندر جو ہوتا ہے نا دریا کا اینڈ نظر آ جاتا ہے، ندی نالوں کا اینڈ نظر آتا ہے، سمندر کا کچھ اینڈ نظر نہیں آتا. حد نکاح تک لگتا ہے پانی ہی ہے، یہ کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا. ایسے ہی آخرت کی زندگی بھی ہے. پھر آپ دیکھیں، آپ نے کوشش کی کہ آپ یاد رکھیں کون سا ایک کلمہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی ڈرائے دھمکائے، کوئی دشمن سے خطرہ ہو، کوئی ایسے حالات ہوں ڈرنے والے، تو پھر یہی کلمہ بولنا ہے جو آپ کو ہمت دیتا ہے. اسی طرح پھر ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان کیسے اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے مومنوں کو، کہ ڈر جاؤ ان سے، وہ آ رہے ہیں، وہ تمہیں پکڑ لیں گے، وہ ایسے کریں گے. تو یہ خوف دل سے نکال دینے، اور کس کا خوف صرف دل میں رکھنا ہے؟ اللہ کا، اس لیے کہ سب کچھ اسی کا تو ہے، لہو ملک السماوات والارض. ٹھیک ہے، تو پھر جب اللہ کی بڑائی کی طرف دیکھیں گے نا تو چھوٹوں کے خوف ختم ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ کی بڑائی دل میں نہیں ہوتی تو پھر انسان ہر ایک سے ڈرتا ہے. اب بڑوں کا بڑا رب ہے، تو اس سے انسان ڈرے، نہ کہ چھوٹے چھوٹوں سے ڈرے. اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کچھ نقصان نہیں کر سکتا. جاؤ اگر کسی نے ایمان چھوڑ کے کفر اختیار کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، جاؤ تم، اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگڑتا. اور یاد رکھو، آزمائشیں اللہ اس لیے دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ پتہ چل جائے تم میں خبیث کون ہے اور طیب کون ہے. دعوے تو سارے ہی بہت بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا مومن کوئی ہے نہیں، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے. اور پھر بخل کے اوپر ہم نے بہت بات پڑھی. اور بخل جو ہوتا ہے نا، صرف مال میں نہیں ہوتا کہ آپ کہیں پیسے میں نے نہیں کسی کو دیے، بخل ہر چیز میں بخل ہوتا ہے. بعض دفعہ کپڑوں پہ بخل کرتے ہیں، کسی کو نہیں دینے، پڑے پڑے کپڑے سڑتے رہیں گے لیکن دینے نہیں. کھانے پہ بخل کر دیتے ہیں، فریج میں پڑا رہے گا، خراب ہو جائے گا، مگر کسی کو دینا نہیں ہے کیونکہ دینے کا حوصلہ نہیں ہے. گاڑی چلا کے لے کے جا رہے ہیں، خالی ہے گاڑی لیکن کسی کو بٹھانا نہیں ہے. یہ بخل ہے، یہ نا دل کی تنگی ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بخیل نہیں ہوتا، لیکن جب وہ دوسرے کو دیکھتا ہے نا، وہ بخل کر رہا ہے، وہ اپنی چیزیں بچا بچا کے رکھتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں میں کوئی پاگل ہوں، میں ہی ہوں جو پاگل، میں ایسے ہی اتنا دیتی جا رہی ہوں اور لٹاتی جا رہی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ دیکھو فلاں کو کتنا سنبھال کے رکھتا ہے، وہ تو کسی کو دیتی نہیں ہے چیز، وہ کسی کو کھلاتی نہیں ہے، اس کے گھر جاؤ تو دیکھا ہے کتنی وہ بڑی عقل مند ہے. نہیں، وہ عقل مند نہیں ہے. آپ وہ میں نے بتائی تھی وہ حدیث کہ جنت میں بخیل داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جہنم کے قریب ہے بخیل، جنت سے دور ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ بھی اس کی طرح کے ہو جائیں. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور دل بھی بڑا دیا ہے نا، تو اس کے اوپر بہت اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے، बहुत, और मत नकल करें उन लोगों की जो बकील है, कि उनको देख देख के आप भी सोचने ही लग जाएं कि हाँ मुझे भी ऐसा करना चाहिए। वो अकलमंदी नहीं है, वो बेवकूफी है, वो बेवकूफी है। और ये एक मर्ज है, ये एक बीमारी है, उसको ये बीमारी लग गई, आप भी क्या अपने ऊपर ये बीमारी लाना चाहते हैं? और देखिए ना, सखी अल्लाह से करीब होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, और जहन्नुम से दूर होता है। और बखील क्या होता है? वो अल्लाह से दूर होता है, अल्लाह को नहीं पसंद बखील इंसान। तो क्या फिर बखील बनना चाहेंगे? ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर हम बुखल करते हैं तो बड़ी चीजें तो दूर की बात है। तो मत बुखल करें, बुखल को अपने अंदर से निकालें। अगर ये बीमारी लगी हुई है, अल्लाह से दुआएं मांगे, और मैंने आपको मसनून दुआ भी बताई थी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज्यादा देने वाले थे, खर्च करने वाले थे, वो भी बुखल से पनाह मांगा करते थे, और उन्होंने हमें ये दुआ सिखा दी कि किस तरह से आपने बुखल से अल्लाह से पनाह मांगनी, कि अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में ले ले, कि इस बीमारी से बचा ले। चाहे हम और बीमारियों से इतना बचने की कोशिश करते हैं, बुखल से बचने की कोशिश नहीं करेंगे? और इसके लिए आपको चाहिए कि आप इसकी बाकायदा कोशिश करें, कोशिश से दें लोगों को। आपका दिल अंदर से तंग होगा, लेकिन आप कहें कि मैंने देना है, और फिर आपको खुशी हासिल होगी, और कभी उन लोगों को देखकर उनकी नकल में आप खुद भी बखील ना बन जाए, बल्कि जब भी देने का मौका है तो कहें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दे दी कि मैं दे रही हूँ। मैं किसी को चाहे राइड दे रही हूँ, किसी को कोई कपड़ा दे रही हूँ, किसी को कोई नेमत शेयर, कोई भी नेमत कर रही, फूड है, कोई भी चीज आप किसी को खिलाते हैं पिलाते हैं। हाँ वो तो नहीं किसी को खिलाते, हम ही रह गए खिलाने को, नहीं वो तो नहीं हमें कभी कोई तोहफा देते, हम ही उनको देते रहे। मैंने तो उसको इतना दिया था, उसने मुझे इतना नहीं दिया, तो शुक्र है आपने ज्यादा दिया। ऊपर वाला हाथ तो हमेशा नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, ठीक है? तो इस चीज के ऊपर हमने काबू पाना है। इसी तरह फिर अल्लाह ताला के बारे में जुबान खोलते वक्त ना बहुत एहतियात करनी है। जब अहकामात सामने आते हैं अल्लाह के, तो उस वक्त यहूदियों का क्या रिएक्शन था, और उन्होंने कैसी बातें की। अल्लाह ताला हमें माफ करे ऐसी कोई भी बात जुबान से निकालने में कि जो अल्लाह को नाराज करने वाली है। तो हमेशा याद रखिए, अल्लाह के बारे में बात करनी है तो केयरफुली करें, छोटी बात नहीं है, किसी बच्चे की बात नहीं कर रहे आप, किसी अपने जैसे की बात नहीं कर रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन की बात कर रहे हैं। तो केयरफुल, उनकी तरह नहीं, इन अल्लाह फकीर व नहनु अग्निया, वो हमसे मांगता है, कितनी तौहीन आमेज बात है, और इससे दिल भी बड़ा कर ले। लोगों ने तो अल्लाह की जात को नहीं छोड़ा जो हर ऐब से पाक है, तो हमारे जैसों को कौन छोड़ेगा? तो लोगों ने तो कहीं ना कहीं बातें जरूरी बनानी है, आप कभी नहीं बच सकते लोगों की बातों से। कोई अच्छा कहेगा तो कोई बुरा भी कहने वाला खड़ा हो जाएगा, तो इसलिए लोगों की बातों से बेनियाज हो जाए। अच्छा, फिर हमने बहुत बड़ी हकीकत पढ़ी कि इस दुनिया की हकीकत क्या है, और हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जब तक चखोगे नहीं, पता ही नहीं चलना मौत है क्या चीज। कहने को बातें हम कर सकते हैं, लेकिन बात देखें करनी आसान है, उस बात को, उस चीज को जानना मुश्किल है। मौत का मजा क्या है वो देखें, ऐसा है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला हमें माफ करे, बताया जाता है कि इंसान को कितने भी गम इस दुनिया में आए, मगर जो मौत की तकलीफ है वो हर एक चीज से ज्यादा बड़ी है। इसी तरह हमें पता चलता है कि दुनिया फानी है, जो मौत आनी है तो उसके बाद क्या है, तो वफ़ऊना उजूरकुम, तुम्हें पूरे पूरे बदले दे दिए जाएंगे। आज देखें हम बैठे हुए हैं, ये साल, ये लम्हा, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, इसके बाद 2120 आएगा, 2020 नहीं आना, और 100 साल गुजर चुके होंगे, ना मैं आऊंगी ना आप होंगे, हमारी हड्डियां भी रेजा रेजा हो चुकी होंगी। तब तक हमारी, हमें क्या मिला है, फमन जुहजी आने नारी व उदखिल जन्नत फकद फाज, ये कामयाबी मिली है या नहीं मिली, ये भी पता चल जाएगा। हमारी ये छोड़े हुए घर किसी और के हो गए होंगे, हमारे कपड़े जो बहुत सीधा होके कहीं फिक चुके होंगे, जिनके पीछे आज इतनी वक्त लगाते, हमारी गाड़ियां वो आगे से आगे किसी और के पास होती होती वो ट्रैश हो चुकी होंगी, और हम उस वक्त किसी के ख्याल में भी नहीं होंगे। आज भला आप अपने परदादा परदादी को कभी याद करते हैं? कभी भी नहीं याद करता कोई, कोई नहीं जानता, तो हमारे हमारे बारे में 100 साल बाद कौन सोचेगा? तो आज ये जो हमारे वजूद है, जो हमारे ये जो है ना, हमारी हर वक्त का मैं और मेरा और मैं और मेरा, ये सब खत्म हो जाना, और ये सब किसी और का होगा, जो जमीनें हैं, जायदादें हैं, पैसा है, गोल्ड है, किसी और के पास होगा ये, और कोई ऐसा होने से रोक नहीं सकता, लेकिन कम ही लोग हैं जो इस चीज के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं। तो इस धोखे के घर को पहचानना है कि ये वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, यही इसका धोखा है। इंसान ख्वाहिशात ख्वाहिशात और इन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है, कभी कुछ ख्वाहिश आती है, कभी कुछ ख्वाहिश, अभी दिल कर रहा है ये करूं, अब दिल कर रहा है वो करूं, यही तो है ख्वाहिशात जिनके पीछे इंसान भागता जाता है। तो दिल कर रहा है तो दिल कर रहा है उठ के चल पड़े, दिल कर रहा है उठ के ये खा लिया, दिल कर रहा है वैसे चल, बस दिल कर रहा है, तो दिल पे अगर चलना है तो यही तो धोखा है इस दुनिया का। और जिस वक्त हाँ ये 100 साल गुजर जाएंगे ना, हमें उस वक्त मालूम हो चुका होगा अच्छी तरह कि वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है मगर धोखा, ये आज नहीं समझ आ रहा, मगर उस वक्त जरूर समझ आ चुका होगा। ये ना हो कि उस वक्त कहें या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। तो आज की आयतें देखते हैं हमें क्या सिखा रही हैं, बहुत आज की भी आयतें इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ताला ने फरमाया है आयत नंबर 186 से देखें, लतुबलवुन, अलबत्ता तुम जरूर आजमाए जाओगे, फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, अपने मालों में भी और अपनी जानों में भी। हमने इसी किस्म की बात सूरह बकरा में पढ़ी भी है, अल्लाह ताला ने फरमाया लतुबलवुन्नकुम लतबलवुन्ना, फी वहां पे किसी और तरह से आती, हाँ अब मेरे जहन में नहीं आ रही, तो बाहर कैफ, वहां पे हम इसी बात को पढ़ चुके हैं, और वहां पे हमने क्या पढ़ा कि खौफ से भी अल्लाह आजमाएगा, जान और माल के नुकसान से भी आजमाया जाएगा, फलों से भी इंसान आजमाया जाएगा, इंसान कितनी चीजों से आजमाया जाएगा इस जिंदगी के अंदर, जो नेमतें अल्लाह ताला ने उसको दी हैं उनमें उसका टेस्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज के बारे में बताया गया, क्या बताया गया, लतस्मउन्न मिनल्लदीना उतुल किताब मिन कबलिकुम, और अलबत्ता तुम जरूर सुनोगे उन लोगों से जो किताब दिए गए तुमसे पहले, वा मिनल्लदीना अशरकू, और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, अज़न कसीरा, बहुत तकलीफ दे बातें, बहुत अजियत। यानी यहां पर इस जगह पे अल्लाह ताला ने दीन में आजमाइश की भी बात बता दी है, वहां पे और इससे पहले मालों में और जानों में आजमाइश की। माल में आजमाइश कैसे होती है, इंसान के माल में कभी नुकसान आ जाता है, कारोबार में कमी आ जाती है, इंसान के लिए अपने फाइनेंसेस संभालना मुश्किल हो जाता है, ये बिल वो फीसें वो टैक्स वो फलां चीजें, और इंसान फंस के रह जाता है, माली मुश्किलात जो है ना वो भी आजमाइश है। इसी तरह माल का वाफिर हो जाना भी आजमाइश है कि इतना माल हो जाए, अल्लाह उससे भी टेस्ट करता है कि देखे कि करता क्या अब ये बंदा। इसी तरह तुम्हारी अपनी जानों में भी, जानों के अंदर कभी इंसान के ऊपर कोई बीमारी आ जाती है, कभी इंसान से कोई प्यारा बिछड़ जाता है, कभी इंसान के कोई प्यारे की कोई तकलीफ आ जाती है, तो तुम्हारी अपनी जानों में भी है, कभी औलाद के साथ कुछ हो जाता है, तो इनमें टेस्ट ही टेस्ट हैं और बड़ी चोटें लगती हैं इंसान को, लेकिन अल्लाह ताला फिर उस वक्त देखता है ना कि तुम मुंह से क्या बोलते हो, तुम क्या कहते हो, तुम्हारे रिएक्शंस क्या होते हैं, ये है टेस्ट। अब हम ये कह के तो बैठ जाते हैं, हाँ जी टेस्ट है मेरा, ये तो मेरा इम्तिहान है। ये तो अगर आपने पहचान लिया कि आपका इम्तिहान है ना, तो उसके बाद केयरफुल हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह पहला मरहला आपने पूरा कर लिया कि आपने जान लिया मेरा इम्तिहान है। दूसरा मरहला ये है कि अल्लाह देखेगा आप करते क्या है। अब इसके बाद कोई हराम कोई नाजायज तरीके अपनाते हैं उस चीज से निकलने के लिए, बाज लोग जादू टूने और शिरकिया चीजों के पीछे चल पड़ते, बाज लोग और हराम मीन्स कोई रिश्वतें कोई सूद कोई हराम कमाइयों के पीछे चल पड़ते हैं, बाज लोग और कई ऐसे तरीके अपनाते हैं, बाज वावेला बहुत करते हैं चीखते चिल्लाते बहुत हैं, बाज इसके बाद जुबान से ऐसे कलिमात निकालते हैं जो नाजेबा होते हैं। तो ये है इम्तिहान कि अब तुम बोलते क्या हो, अब तुम करते क्या हो। अल्लाह ने तो टेस्ट की सिचुएशन में डाल दिया। इस वक्त अगर अगर देखा जाए तो हर एक बंदा जो है वो किसी ना किसी इम्तिहान से गुजर रहा है। यानी मेरे पास तो इतने मसाइल आते हैं ना लोगों के, तो मैं देखती हूँ कि लोग बहुत बहुत तरह की चीजों में आजमाए गए हैं। खास तौर पे औलाद में बहुत लोग आजमाए जाते हैं, सेहत के में बहुत आजमाइश आती है, और इंसान उस वक्त सोचता है कि हाय मैं ही रह गई थी। ये आता है दिमाग के अंदर ख्याल, और शैतान लाता है ये, मैं ही रह गई थी, मेरे ऊपर ही आनी थी। लेकिन उस वक्त समझने की जरूरत है कि अल्लाह मुझे आजमा रहा है। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइ मिन अल खौफि वल जुअ व नक्सि मिन अल अमवाली वल अनफुसि वस समरात व बशीरिस साबिरीन। ये मुझे याद आ गई आयत, सूरह बकरा में थी, हमने पढ़ी थी 155, कि अल्लाह ताला कहते हैं बशारत दो किन को, सबर करने वालों। और कितनी सारी चीजें बता दी हैं हम तुम्हें, टेस्ट करेंगे उनमें, टेस्ट होगा, आजमाइश आएगी जब। और देखें वहां पे भी और यहां भी आप देखें कितना एम्फोसिस है, जरूर आजमाए जाओगे तुम, जरूर, ये तो आजमाइश आनी है। फुजैल बिन अय्यास जो थे ना, वो इस तरह की आयतें पढ़ते थे ना, आगे भी आएंगी आजमाइश की, तो वो बड़ा रोते थे, कहते थे अल्लाह तू हमें आजमाना ना, कि तूने अगर हमें आजमा लिया ना तो हम रुसवा हो जाएंगे और हमारे पर्दे खुल जाएंगे। और वाकई ये हमारे ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं, हमारे ईमान की बातों पे, हमारे और बड़े बड़े हमारे दावे हैं, बातें तो हमसे जितनी मर्जी सुन लेना, तो इतने बड़े हम दावे करते हैं, लेकिन जिस वक्त आजमाइश आती है उस वक्त वाकई पोल खुल जाते हैं। तो वो कहते हैं हमारे पर्दे खुल जाएंगे, वो रोते थे ये पढ़ के, फुसैल बिन अय्यास जैसे इंसान, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और वला तस्माउन, और तुम जरूर सुनोगे इनसे, किन से, उतुल किताबा मेरे कबले को, यानी अहले किताब से, ये क्रिश्चियन और ज्यू से और मुशरिकों से, बड़ी अजियत की बातें सुनोगे। और क्या हम सुनते नहीं है, क्या हम देखते नहीं है रवैये, इस्लामोफोबिया क्या है, फिर मुसलमानों को टेररिस्ट कह देना, उनको पता नहीं क्या क्या अलकाबात दे देना, एक्सट्रीमिस्ट फलां, इस तरह की बातें करके उनको तकलीफ देना, बातों से भी तकलीफ होती है, अजियत में बातें भी आ जाती हैं, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडास भी आ जाते हैं, इसके अंदर फिजिकल टॉर्चर्स भी आ जाते हैं। और बाज मुल्कों में ऐसा है जहां पे किस लिए अजियत दी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला हुआ। तो अल्लाह ताला ने तो ये कुरान में फरमा दिया तुम जरूर सुनोगे इनसे ऐसी अजियत वाली बातें, तुम जरूर इन तुम्हारे पर आएंगी वर्बल परसिक्यूशन, वो ये तो सुननी पड़ेंगी तुम्हें, उन्होंने चैन से नहीं बैठना। और ये उस वक्त भी था, यहूदियों से ऐसी ऐसी बातें सुनते थे मुसलमान, और इससे क्या बड़ी बात हो सकती कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम को भी सुननी पड़ती थी, मैं और आप उनसे क्या बेहतर, ये कोई नई बात नहीं हुई कि हम कहें आज ऐसे हो रहा है, ये उस वक्त भी था कि बुखारी शरीफ में आता है इसी आयत की तफसीर में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पर सवार होके जा रहे थे। एक तो आप ये नोट करें गधे पे, हालांकि उस वक्त भी लग्जरी जो सवारी थी ना वो घोड़ा थी, गधा कोई जैसे समझ लें कि आज कोई साइकिल पे जा रहा हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें आर नहीं कभी समझी कि मुझे शर्म आती लोग क्या कहेंगे, मेरे लिए तो बहुत आला नस्ल का कोई घोड़ा होना चाहिए, नहीं गधे पर जा रहे हैं। और हजरत उसामा को पीछे बिठाया कि साद बिन अबादा की अयादत के लिए बनू हारिस के कबीले में तशरीफ ले जा रहे थे। तो ये वाकया जंगे बदर से भी पहले का, रास्ते में एक मजलिस देखी जो जिसमें मुसलमान भी थे, यहूदी भी थे, मुशरिक भी थे, और अब्दुल्ला बिन उबई भी था जो अभी तक तो मुसलमान नहीं हुआ था, वो तो पहले मुसलमान होके भी तो खैर काफिर ही था, लेकिन अभी तो वो मतलब कुफर पे था अपने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी से जाहिर है डस्ट वगैरह उड़ी, गर्दो गुबार उड़ा, तो अब्दुल्ला बिन उबई ने नाक पे कपड़ा रख लिया और बहुत ही नाजेबा बातें की, कहने लगा ये इतना गुबार ना उड़ाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास पहुंच ही चुके थे, सवारी से उतर आए, सलाम किया, उनको इस्लाम की दावत दी, कुरान की चंद आयतें सुनाई, तो आगे से कहने लगा ये आपका तरीका हमें कोई पसंद नहीं है, आपकी बातें हक होंगी लेकिन क्या वजह है कि आप हमारी मजलिसों में आके हमें तकलीफ देते हैं, जाए अपने घर जाके बैठे, जिसने सुननी होगी वहां पे आके सुन लेगा आपकी बातें। अल्लाह अकबर, ये सुन के अब्दुल्ला बिन रवाहा, मुसलमान भी तो जाहिर है वहां पे थे, तो उन्होंने कहा या रसूल्ला आप हमें जरूर बताएं, आप जरूर हमारी मजलिसों में आए, हमें तो बड़ी चाहत है कि आप आए और हमें बताएं। और इतनी इन बातों के ऊपर ना आपस में उनकी यानी ऐसे होने लगा था कि बस लड़ाई शुरू हो गई, बुरा भला कहने लगे और करीब तक खड़े होकर लड़ना ही शुरू हो गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए सब्र किया, समझाया बुझाया, ये नहीं कि चलो मुसलमानों तुम बैठे क्यों हो, तुम इसका गिरेबान पकड़ो, इसने की क्या जरूरत है कि ये बोले, नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया बुझाया, अमनो अमान कराया, सारे खामोश हो गए, आप अपनी सवारी पे चुप करके बैठ के हजरत साहब के साथ तशरीफ ले आए के घर में तशरीफ ले आए, उनको आके कहा कि इस तरह उसने किया, तो उन्होंने कहा था इनको जाने दें, आपको पता है वो तो आपसे वैसे ही जलस है इतना ज्यादा, वो तो खुद सरदार बनना चाहता था तो अब उसको रंज बहुत है इसलिए वो ये ऐसा करता है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप कोई अनोखे नहीं है जिनको ऐसी कोई तकलीफें सुननी पड़ती हैं कि मीडिया आपके खिलाफ है, फलाना आपके खिलाफ है, जी वो हमारे खिलाफ बातें करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था जो ये यहूद और नसारा और मुशरिकीन पहले से इस तरह के काम करते थे, ये नई बातें नहीं है। अभी आपने पीछे बात सुनी, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होगा उसके लिए तो क्या दिल पे गुजरेगी कि कोई अल्लाह के लिए ये बात कहे कि वो फकीर है और हम गनी हैं, क्या इससे तकलीफ नहीं होती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ऐसी बातें करे, लेकिन वो बर्दाश्त करते थे। क्या इसका गुर बताया, क्या करो तुम भी उनको गालियां देना शुरू कर दो, वो तुम्हारे कुरान को जलाने के लिए खड़े हो जाते हैं, तुम भी उनकी बाइबल जलाना शुरू कर दो, वो तरह तरह की तुम्हारे लिए ऐसी गलीज बातें करते हैं, तुम्हारे नबी के ऊपर बातें ऐसी करते हैं, तुम भी क्या उनके नबी पे करना शुरू कर दो, नहीं तुम्हें क्या बताया अल्लाह ने, वह इन तस्बीरू व तत्तकू, तुम सब्र करो, तुम तकवा इख्तियार करो, फइन्ना ज़ालिका मिन अज़्म अल-उमूर, तो बेशक ये बड़े हिम्मत के कामों में से, कभी कार्टून बना रहे हैं, कभी कुरान को जलाने खड़े हो गए, कभी मीडिया वॉर आज ऐसी है कि मतलब यानी मैं कहती हूँ आजकल जंग ही ये है कि मीडिया पे जो है, अब इसके अंदर मुसलमानों के दिल इतने गमगीन होते हैं, इतने ज्यादा वो परेशान हो जाते हैं, उनको होता है कि हम कैसे रिवेंज लें, हम बस कैसे इनको बदला लें, तो अब हम भी कोई तखरीबकारी करें, नहीं आपको कहा गया कि ये तो तुम सुनोगे, ये भी तुम्हारा इम्तिहान है, ये भी इम्तिहान है, मालों में भी इम्तिहान है, जानों में भी इम्तिहान है, और इसमें भी इम्तिहान है, तुमने क्या करना है, अल्लाह ने तो तुम्हें नुस्खा बता दिया सबर और तकवा। पूरे मक्की दौर में आप देखें क्या मुसलमानों ने कोई अजियत ऐसी थी जो उन्होंने ना सही हो, बातें सुननी तो बहुत छोटी बात रह जाती है, कौन सा टॉर्चर ऐसा था जो उन्होंने ना बर्दाश्त किया, और आज भी दुनिया में ऐसा है और ऐसी भी जगह हैं जहां पर लॉकडाउन में है मुसलमान, और कितने महीने हो गए, तुम मुशरिकों से भी सुनोगे और उनसे भी। और ये याद रखिए, उस जमाने के जो थे ना उतुल किताब यानी यहूदी जो थे, वो थे समझ लें कि जो इल्म वाले, जो दीनदार लोग जिनको आप कहते हैं ना, दीनदार नेक लोग, दीनदार लोग ये वो थे। और मुशरिक तो खैर आम मुशरिक थे ही। आज के वक्त में भी आपको उन लोगों से, अब यहाँ पे यहूद नसारा की जगह आप रख लें, जो दीनदार यानी मतलब जो मुसलमान है, उनसे भी आपको बातें सुननी पड़ेंगी। जी हाँ, वो गैरों से सुन तो सुननी पड़ेंगी, इनसे भी सुननी पड़ेंगी। कभी आपको मुल्ला नहीं कहेंगे, कभी आपको किसी और तरह के अलकाबात देंगे, तुम तो ये बन गई हो, तुम तो ऐसी हो गई हो, तुम तो फनेटिक हो, तुम तो ये हो, बहुत सारी चीजें सुननी पड़ेंगी। फिर आपने क्या करना, लड़ने खड़ी हो जाएंगी उनसे, क्या करेंगी फिर, या छोड़ देंगी सब कुछ। यही तो बताया गया तस्बीरू। तस्बीरू क्या है? सबर मैंने आपको बताया था बहुत तरह का होता है। नंबर 1 सबर क्या है? अल्लाह की इताहत के ऊपर सबर करना, कि नेकी पे जम जाना, डट जाना, ये भी एक सबर है जो यहां पे कहा गया। तुमने ये नहीं करना कि उनकी बातें सुन के तुम भाग ही जाओ, नहीं, हाँ देखो इतनी बातें बना रहे हैं, देखो आज के हालात नहीं है, देखो ये कितना प्रोपोगंडा हो रहा है, नहीं, हम तो भाई खैर बात कहते हैं इस दिन को। नहीं, तुम सबर करो, ये सबर की एक किस्म है कि डट जाओ, जम जाओ। और दूसरा सबर क्या होता है? गुनाहों से बचना भी, ये भी सबर होता है, क्योंकि आप सबर के बगैर गुनाह से भी नहीं बच सकते। गुनाहों को नहीं करना, मैंने चाहे मेरा कितना दिल कर रहा, मुझे अच्छे लगती है ये चीज, ये पहनना, ये खाना, ये ऐसी चीजें मुझे सब पसंद है, लेकिन मैंने नहीं करनी, सबर है ये। और फिर तीसरा सबर तो आपको पता ही है, मुसीबतों पे, गमों पे सबर करना। तो ये 3 तरह के सबर है। यहाँ पे कौन सा सबर? तुम डट जाओ, तुम भाग ना जाना, तुम घबरा ना जाना, तुम छोड़ छाड़ ना देना सब कुछ। वह तत्तकू, और तुम तकवा इख्तियार करो। क्या बताया था मैंने आपको तकवा का? आप तो मेरे ख्याल याद हो जाना चाहिए आपको, कि हर लम्हा अल्लाह की नाराजगी से बचना हमारी जिंदगी का मकसद बन जाए, और हर लम्हा अल्लाह की रजा पे चलना हमें महबूब हो। बस ये है तकवा। कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि तकवा तकवा पढ़ते रहे, पूरा कुरान खत्म कर दिया, तकवा ही ना समझ आया तो क्या आया। तकवा की गर्दान रखते रहे, और तकवा मैंने अप्लाई कैसे करना है जिंदगी में, मैंने कैसे मुत्तकी बनना है ये समझ ही ना आए, तो फिर क्या तकवा हुआ? लेकिन अल्लाह ताला ने साथ फरमा दिया, ये बड़े हिम्मत के कामों में से, ये हर कोई नहीं कर पाएगा, ये इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। इंसान खुद को नेगेटिव रिएक्शन से भी बचाए और फिर जमा भी रहे, हर वो काम करता भी रहे, अब तो कामों को छोड़ के नहीं बैठ जाए। क्योंकि बाज दफा ऐसे होता है जब नेगेटिव प्रोपगेंडास अपने उनकी तरफ से आते हैं, ये तुम आपने क्या शुरू कर दिया पढ़ने पढ़ाने का काम, ये आपने क्या, जब ऐसी बातें आती ना तो इंसान कहता है अच्छा मैं भी अब इसको कैसे जवाब दूं। अब जवाब देने की जरूरत नहीं है। देखें क्यों नहीं जरूरत, क्यों है सबर करना और तकवा क्यों कहा गया पता है? क्यों क्यों जवाब नहीं देना? इसलिए कि अगर आप जवाब देने में लग गए ना, तो इतने आपके सामने चीजें आएंगी कि आपकी सारी एनर्जी इनको जवाब देने में ही लग जाएगी, और आप अपने जो काम है ना वो कभी नहीं कर सकेंगे। वो इस बात को मैंने खुद प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा। बहुत लोग बातें बनाते हैं, बहुत लोग कामों पे क्रिटिसाइज भी करते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज कर ली कि मैंने नहीं जवाब देना। कोई कहता है अरे मेरे तक पहुंचती भी है बातें, फलां ने ये कह दिया, फलां वो कर रहा है, फलां आपको ऐसे कह रहा है, तो क्या हुआ, वो कहते रहे। अल्लाह के नबी को नहीं लोगों ने छोड़ा, अंबिया को नहीं छोड़ा, अब हम क्या इनको जवाब देते रहे? अब इनको जवाब देने में अगर आप लग जाए तो क्या आप पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या उन्हीं सोचों में सोचते रहे, अच्छा मैं इसको कैसे जवाब दूं, अच्छा मैं क्या करूं, इसका क्या इलाज करूं? नहीं, आप अपना काम करते चले जाएं, ये है सबर, जमे रहें जो कर रहे हैं। और वो खुद ही बोल बोल के कब तक बोलेंगे, एक दिन तो चुप कर ही जाएंगे ना। हाँ तकलीफ देती हैं ये चीजें, इसीलिए इसको कहा गया ये हिम्मत के कामों में से है। ठीक है, तो कितना बड़ा सबक हमें मिला ना, लिया कि नहीं सबक इससे आपने, पढ़ के आगे नहीं जाना चले जाना। देखिए पढ़ के उसको समझना है, इसको अपने अंदर उतारना है, ये ना हो कि कल को ऐसी कोई बात आए आपके सामने और आपको भूल ही गया हो कि हमने ये आयत पढ़ी थी। तो फिर वो पढ़ने का फायदा नहीं है। या तो हाईलाइट कर लें उसको, टाइम टू टाइम पढ़ते रहें। वइद अखद अल्लाह मीसाक अल्लदीन उतुल किताबा, और जब अल्लाह ने पक्का वादा लिया, किन से? अल्लदीन उतुल किताब, उन लोगों से जो दिए गए किताब। क्या वादा लिया था? यहूदो नसारा से क्या वादा लिया था? लतुबय्यिनन्नहु लिन्नास, कि तुम बयान करोगे इसको, किसको? किताब को। किताब की पहले बात आ रही ना, वो दिए गए किताब, तो तुम इस किताब को बयान करोगे, किसको बयान करना है? लिन्नास, लोगों के लिए, जो उनके वक्त के लोग थे। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, इनके पास इमामत की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। इमामत ये नहीं कि कोई मस्जिद की इमामत थी, मतलब इस दीन को तुमने लेके आगे चलना है, तो तुमने लोगों को बताना है, पहुंचानी है उन तक किताब। वला तब तुम ना, और तुमने छुपाना नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? फनबदूहु वरा अदहुरिहिम, उन्होंने तो वो किताब को उठा के फेंका अपने पीछे, अपनी पीठों के पीछे। मतलब क्या, फिजिकली उठा के फेंक दिया? नहीं, वो तो इतनी इज्जत करते थे अपनी किताब की, वो तो आम लोगों को पढ़ने भी नहीं देते थे। उनके बड़े बड़े उलमा ही पढ़ते थे, वही लोगों को तक बयान करते थे। कहते थे नहीं, आप नहीं इस काबिल हैं कि आप ये किताब पढ़ें, ये तो मतलब है कि बड़े पहुंचे हुए लोग ही पढ़ सकते हैं, जो बड़े बड़े उलमा हैं। तो वो तो इतनी इज्जत करते थे, कुरान कह रहा है कि उन्होंने पीठ पीछे फेंक दिया। फिजिकली नहीं फेंक दिया, पीठ पीछे फेंकने का मतलब क्या है? मतलब ये किसको बिल्कुल भुला दिया, इग्नोर कर दिया। ऐसे जैसे आप अपने पीछे कोई चीज फेंक दें तो क्या होगा, आपको नजर नहीं आएगी ना, आपको जो आपके आगे चीज है वो नजर आती है। तो जब उन्होंने अपनी किताबों को पीछे फेंक दिया, तो मुराद क्या है? उन्होंने बिल्कुल भुला दिया, इग्नोर, दे डिडंट इवन केयर। जिस चीज की आप केयर ना करें, उठा के पीछे फेंक दें ना, जैसे आप उठा के कोई किताब पीछे फेंक दें, तो क्या मतलब है कि आपने उसकी कोई केयर नहीं की। वश्तरऊ बिही थमनन कलीला, और उन्होंने इसको बेच दिया थोड़ी कीमत पे। वो कैसे बेचा? क्या पैसे लेते थे और फिर वो बेचते थे उस किताबों को, सेल करते थे किताबें? नहीं, मतलब क्या है, फतवे बेचते थे। फतवे भी बेचते हैं जनाब, कि कोई आया, किसी ने सवाल किया, अब वो कह रहा जी हमारे तो ये बहुत बड़ी औरत है जिसने चोरी कर ली है, अब आप इसका तो कोई हल निकालें। तो अब इसका तो नहीं, हमने इसको ऐसी सजा थोड़ी देनी है, बदनाम हो जाएगी ये, तो अब ऐसा करें, कोई कहीं से कुछ ऐसे निकाल के, चलो उसको कुछ और ही बता दिया, नहीं इसके ये भी निकलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है, इसका इस तरह करके उसको सेटिस्फाई करके भेज दिया। अब क्या, वो तो इसकी आवभगत करेगा ना, वो तो इसका फैन बन जाएगा ना। सिर्फ पैसे नहीं देना होता, और खैर पूरी दुनिया भी कोई दे दे तो वो समनन कलीला ही है। वो उसको लाद भी दें, उस मुफ्ती, उस आलिम को, पैसों से, ओहदों से, गाड़ियों से, जायदादों से, वो समनन कलीला ही है। क्योंकि उसने जो बेचा वो अल्लाह की आयात है, और उसके बदले में जो कीमत ली वो तो थोड़ी है। और वैसे भी पूरी दुनिया आखरत के मुकाबले में क्या है? मैंने जो आपको हदीस बताई थी, समंदर में उंगली डबो के देख लें, आपका पता चल जाएगा क्या है। तो ये काम करने लगे। अल्लाह तआला ने फरमाया फबिस्सा मा यश्तरून, कितना बुरा है जो ये खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। ये कैसी ये इनकी ट्रेडिंग है, क्या ट्रेड किया इन्होंने? उनकी मनमाने फतवे दे दिए ताकि वो खुश हो जाए, और उसके पीछे चौधराहटे ले ली, ओहदे ले लिए, पैसे ले लिए, ये है बस। याद है आपको कि मैंने सूरह आले इमरान जब शुरू हुई थी तो आपको बताया था कि वो जो वफादार आ था, उस बंदे ने क्या कहा था अपने भाई से? उसने कहा था अगर हम इनको मान लेंगे, ये हैं तो सच्चे ही, मान लेंगे तो ये हमारी, ये ओदों का क्या बनेगा, ये जो लोग हमारे आगे पीछे हो रहे हैं इसका क्या बनेगा? तो छुपा लेते थे, नहीं बताते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां लोगों को। तो इन्होंने वो उस वादे को तोड़ा जो अल्लाह ने इनसे लिया था, और झूठ कह रहे हैं कि हमसे तो अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि वो आ गए और आके आपके वो जो कुर्बानी है उसको खा जाए। ये आपने पहले पढ़ी है ना आयतें, वो झूठ बात थी। असल तो अल्लाह ने इनसे ये वादा लिया कि तुम अपनी किताब को बयान करो, और जिसमें साफ निशानी है आखिरी नबी की, हत्ता कि उनका नाम तक भी अहमद है उसके अंदर लिखा हुआ। तुमने उसको छुपाया और बस इस तरह के फतवे देते रहे लोगों को। अब आप ये देखें, उनकी तो बात हो गई, अहले किताब तो थे ही ऐसे, जरा अपने गिरेबान में भी हम झांकते हैं। हमें कहा गया कि हम बयान करें कुरान को या नहीं, या उठा उठा के रख दें ताक में, अलमारियों के ऊपर, गिलाफों के अंदर बंद करके, कोई ना पढ़े इसको। आप नहीं इस काबिल कि आप पढ़े। यहाँ हमें भी कहा गया कि हम इसको बयान करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी तो हज्जतुल विदा में भी कह के गए कि लोगों जो यहाँ पे हो ना, अपने से आगे वालों तक पहुँचा देना, वो उनसे आगे वालों को पहुँचाएं। हो सकता है जो आगे सुनने वाला वो उससे ज्यादा अमल कर ले। तो हमें तो बताया गया कि आपने पहुंचाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी कि अल्लाह उसको तरोताजा रखे, जो मेरे से बात सुने उसको आगे पहुंचाए। तो हमने भी क्या किया? हमने भी पहुंचाना तो दूर की बात, क्या हमने यही नहीं किया? फनबदूहू वरा अज़हूरिहिम, क्या हमने भी अल्लाह की किताब को पीठ पीछे नहीं डाल दिया? हमारे घरों में कुरान कहाँ है, या आज तक कहाँ थे? चलो अब तो एक आपने कोर्स ले लिया, आपको चारों ना चार खोलना ही पड़ता है। इससे पहले कितना खुलता था, कितनी समझ थी, कितना लोगों को बताते थे। शर्माते हैं बताते हुए, शर्म इसलिए आती है कि लोग समझेंगे कि ये कितनी दीनी है, मुझे मुल्लानी ना कह दे। शर्म आती है कुरान की बात करते हुए, बहुत दीनी ना समझ ले मुझे। मैं इसी तरह आ रहा हूँ कि लोग मुझे बहुत फैशनेबल समझें और बहुत अप टू डेट समझें, तो मैंने ऐसे ही अल्लाह रसूल की बातें शुरू कर दी तो फिर तो लोग क्या सोचेंगे? ये चीज़ें हमें रोकती हैं, या इतनी झिझक है अपने अंदर कि बतानी ही नहीं। दुनिया जहान की बातें कर लेंगे, ये नहीं करते। और हदीस शरीफ में आता है कि जिस शख्स से इल्म का कोई मसला पूछा जाए और उसको पता है कि ये क्या है, लेकिन वो उसको छुपा ले, तो कयामत के दिन उसको आग की लगाम पहनाई जाएगी। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। कि हमारी भी जिम्मेदारी है, ये यहूद के उलमा के ऊपर अल्लाह ताला ने फर्दे जुर्म आयद की है। और हम सोच लें कि अगर हम भी एग्जैक्ट सेम काम करते हैं तो फिर हमारा क्या इससे डिफरेंट हमारे लिए कोई बात है? किसी भी नफामंद इल्म को इंसानों से छुपा लेना बुरा है, लेकिन खास तौर पे दीन की बात को छुपाना? आपसे तो इतना कहा जाता है कि आप जाके लोगों तक यही पहुंचा दें कि चलो और मुझे कुछ नहीं आता, आओ आप लोग आगे कुरान सीख लो। वो भी नहीं पहुंचाते, वो भी नहीं किसी को बताते कि मैं भी कुछ पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये ना वो समझेंगे ये पता नहीं बहुत हमारे काबिल नहीं रह गई हमारी दोस्ती की। तो इल्म वालों की जिम्मेदारी है वो आगे बताएं। उम्मते मुहम्मदिया से भी सेम अहद लिया गया है, इसके बाद भी अगर वो यही काम करते हैं तो फिर अंजामे कार सोच लीजिए। हजरत अली से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर तुम्हारी बात से कोई एक बंदा भी अली हिदायत पा गया तो ये सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। उस जमाने में सुर्ख ऊंट बहुत बड़ी कमोडिटी थे, बहुत बड़ी चीज समझे जाते थे। जैसे आज समझ लें कि कोई बड़ी गाड़ियां, बहुत महंगी गाड़ियां, वो उन सुर्ख ऊंटों से बेहतर है कि एक बंदा भी हिदायत पा जाए। लेकिन कितनी बयान करने की चाहत है हमें, कितना इल्म फैलाने की हमें शौक है, तो हम तो इस मामले में इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं ना फिर। और नबी अलैहि सल्लतु वस्सलाम की जिंदगी देखें, कोई मौका नहीं, ऐसा नहीं था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेक्चर देने बैठ जाते थे, बातों बातों में उनको सिखा जाते थे, बातों बातों में बात कह जाते थे, चाहे सफर में है, चाहे हजर में है, चाहे मुसीबत का वक्त है, परेशानी का वक्त है, या खुशी का वक्त है, चाहे किसी की मर्ग है, चाहे किसी की शादी है, चाहे बच्चे की पैदाइश है, या किसी का दुनिया से जाना है, हर मौके पर आप देखेंगे। जंगों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इल्म बांटा, कैसे इसलाह की, कैसे तरबियत की, चाहे फाते बन के रहे और चाहे ऐसी कोई शिकस्त का सामना करना पड़ा जैसे हम भी हमने पढ़ा, तो उन्होंने तो कभी भी इस चीज से फरागत नहीं ली कि ये छुट्टी है बस। तो जरूरी नहीं होता कि क्लास में बैठे भी आप कोई बात कर रहे हैं या ग्रुप्स में ही करें, इसको जिंदगी का एक तरीका बना लें। हमने फैलाना है इल्म को। अंधेरों को दूर करना है। जिहालत तभी दूर होगी जब आप इल्म के चिराग जला देंगे, वरना ये कभी दूर नहीं हो सकती। ला तहसा बनना। और देखिए अगला मैसेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट। अब देखिए हर हर आयत हीरा है, क्या करें, एक एक आयत में सबक है। पहली आयत से भी आपने सबक ले लिया, दूसरी आयत में भी आपको आपको कोई काम करने को मिला या नहीं मिला, क्या करना है आपने, प्रैक्टिकली समझ आ रही है कि नहीं। जिंदगी में कदम कदम पे इम्तिहान आने हैं जनाब, परेशान नहीं होना, ये अल्लाह ने वादा कर लिया, ये आपने पढ़ लिया, पहुंचाना है आगे। और फिर उसके बाद ला तहसबन अल्लदीन यफरहून बिमा अतौ, कभी हरगिज ना ख्याल करें, जो वो जो खुश हो रहे हैं ना साथ उसके जो वो लाए, वयुहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफअलू, और वो चाहते हैं कि वो तारीफ किए जाएं उस पे जो कि उन्होंने किया। फला तहसबन्नहुम बिमफाजत मिन अल अजाब, तो कभी ना गुमान करें कि वो कामयाब होंगे अजाब से, उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है। किन लोगों की बात की जा रही है कि बड़े खुश होते हैं जो वो लाए, यानी कोई चीज अगर कोई कभी उनको कोई नेकी का काम करने की तौफीक मिल नहीं जाए तो इतना इसके ऊपर खुशियां और इतना इसके ऊपर बड़ी अपनी बातें और अपनी तारीफें और ऐसे करते हैं। और अगर कोई चीज नहीं भी की होती, पहले तो जो किए होते हैं उसकी बड़ी धूम मचाते हैं, हम तो ये करा हमने कारनामा, और कुछ नहीं भी किया होता तो उस पे भी चाहते हैं हमें हमारी तारीफें होनी चाहिए। इसका थोड़ा सा पहले शाने नजूल भी समझ लें आप, उससे आपको ज्यादा बात समझ आएगी। कि एक तो अहले किताब की रेफरेंस से देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे किसी बारे में आपने सवाल किया तो उन्होंने उसका गलत जवाब दे दिया, और बाहर निकल के सोचने लगे हमने सवाल का जवाब तो गलत बिल्कुल दिया है और इन्होंने मान भी लिया है, तो अब इनको वैसे चाहिए कि हमारी तारीफ करें और हमारी हमारी कोई मतलब अच्छी शोहरत बयान करें। तो एक तो अहले किताब के उससे रेफरेंस से, दूसरे बुखारी शरीफ में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जाया करते थे तो मुनाफिकीन आपको पता अपने घरों में बैठे रहते थे, नहीं जाते थे, और बड़े खुश होते थे कि हम लड़ाई से बच गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते थे तो अब क्या करें, अब तो बड़ी मुसीबत हो गई, अब हम क्या जवाब देंगे। तो ये आके इतने झूठे सच्चे ऐसे एक्सक्यूजेस बनाते थे, कसमें खा खा के कहते थे हम तो ये हो गया था वो हो गया था, हम तो चाहते थे लेकिन बस ये हो गया ऐसे हो गया और हाँ हम नहीं आपके साथ आ सके। और इसके बाद जबकि पीछे रहे कुछ नहीं किया तब भी चाहते थे कि हमारी तारीफें होनी चाहिए। यानी ये एक तरीका कार यहूद का भी था, ये बस हमारी तारीफें, हालांकि गलत जवाब दिए। और मुनाफिकीन की एक ये बहुत बड़ी बात थी कि वो हमेशा ये चाहते थे कि चाहे काम कुछ किया या किया नहीं, अगर कुछ कर लिया तो उसके ऊपर तो बहुत ही अपनी धूम मचानी, और अगर नहीं भी किया तो बस हमारी तारीफें होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही बुरी चीज है। देखें तारीफ चाहना ये तो वैसे इंसान का अमल ही गलत कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, वो हदीस है तेरे सामने तो इस वक्त नहीं है कि किसी की मुंह पे तारीफ ना करो, ये ऐसे ही है कि तुमने उसके मुंह पे मुंह में खाक डाल दी, मट्टी डाल दी उसके मुंह के ऊपर। कि किसी की ऐसी तारीफ करना उसका दिमाग खराब कर सकती है, उसका बेड़ा गर्क कर सकती है, उसके अमल जाया करा सकती है, उसमें तकब्बुर आ सकता है, और जिसकी वजह से वो तो डूब गया ना। तो अगर तारीफ करनी है, हाँ किसी की हौसला अफजाई के लिए तारीफ की गई, वो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, लेकिन ऐसी खुशामदी तारीफें करना इसकी कोई वो नहीं मिलती। देखें जो भी इंसान करता है वो अल्लाह ही की तौफीक से करता है, अगर उसकी तारीफ करनी हो तो उसके पीठ पीछे की जाए, पीठ पीछे लोग बुराइयां करते हैं, मुंह पे आके तारीफें आप तो अच्छे ही बहुत है, लेकिन जब वो नहीं होता तो कभी उसकी तारीफ नहीं याद आती, तब उसकी बुराइयां याद आती, ये किस किस्म की तारीफ है। तो मुनाफिकीन क्या चाहते होते थे, वो चाहते थे कि उन बातों का भी क्रेडिट ले लें जो उन्होंने की ही नहीं है, उन चीजों पे भी शेखियां मारते थे जो थोड़ा बहुत कुछ कर लिया। ये चीज को अल्लाह ताला ने फरमाया इसको अच्छा ना समझो, ये ना समझो कि इसकी वजह से वो अजाब से बच जाएंगे, उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है। तो ये अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ही बुरी चीज है कि कोई ऐसा चाहे कि उसकी तारीफें की जाएं जबकि उसने काम किया भी ना। हम अपने आप को देखें, क्या हम कभी ऐसा चाहते हैं कि हमने कोई काम किया भी नहीं है और हमारी तारीफें होती रहें? बहुत दफा ऐसा होता है, हमने कोई खाना नहीं पकाया, किसी और ने भेजा हुआ था, लेकिन हम प्रेजेंट करके तारीफें खुद ले रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। बताते नहीं है कि ये तो मैंने नहीं बनाया, उसके पर भी क्रेडिट खुद ले लेना। काम हमने नहीं किया, काम किसी और ने किया, लेकिन उस काम के ऊपर तारीफ अपनी करवाना और तारीफ अपनी चाहना। अब जैसे आप ये पढ़ते हैं, कोई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ेंगे, कोई कुछ भी नहीं पढ़ते, और फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन का वक्त आता है तो वो चाहते हैं कि हमारी भी ऐसे ही तारीफें की जाएं जैसे दूसरों की जाती हैं, या हमें भी वो ही उसी तरह से सर्टिफिकेट और अवार्ड्स दिए जाएं जैसे दूसरों को दिए जा रहे हैं। किस बात पे? नहीं, बस होनी चाहिए। मैंने बहुत दफा जिंदगी में ऐसे मरहले आते हैं, मसलन कोई आइडिया बहुत कामयाब हो गया और लोग कहते हैं आपका आइडिया बड़ा अच्छा, वो उसका आइडिया होता ही नहीं, बताते नहीं कि मेरा नहीं आइडिया, ये तो फलां का आइडिया है, ये तो उसको क्रेडिट जाता है जिसने आइडिया दिया। वो तो चुप करके बैठते हैं, अच्छा मेरी तारीफें हो ही रही हैं, होने दो। यानी हरीस रहते हैं इसके के बस हमारी, चाहे काम में एक हमारे जरा सी भी पार्टिसिपेशन ना हो, फिर भी हर काम में क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं और इस पे फूलते रहते हैं। थोड़ा सा भी करके चाहते हैं कि बहुत तारीफ हो ताकि लोगों में मैं बड़ी बन जाऊं, इसीलिए चाहते हैं ना लोगों में मेरी इज्जत बन जाए। हालांकि जो अल्लाह के लिए करना है तो फिर ऐसे करने वाले को तो परवाह ही नहीं होनी चाहिए, किसने सुना किसने नहीं सुना, किसने तारीफ की किसने नहीं तारीफ की, यहीं से तो आके पता चलता है कितना काम अल्लाह के लिए था, कितना काम दूसरों का, दूसरों के लेक्चर नोट कर करके उनकी बातें बता बता के तारीफें खुद लेते रहना। और लेक्चर कहीं से नोट किया मैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों की किताबों पे अपना नाम करवा के और पब्लिश करा लेते हैं और उस पर खुद तारीफें लेते हैं। तो ये सोचें कि मुनाफिकीन के रवैये थे कि हमारी तारीफें हो, लोग जमीन आसमान के कलाबे मिलाए, हमारी मदा सराई हो, खुशामदी पसंद करते थे। कई लोगों को पसंद आती है कि खुशामदी खुशामदी टोला हमारे इर्द गिर्द है। तो ये सिर्फ दीन के कामों के लिए बात नहीं हो रही, दुनिया के कामों में भी। नंबर वन वो लोग हैं जो काम उन्होंने किया उसके बाद उस पे इतराते हैं, बड़के मारते हैं, अपने कारनामे इसको समझते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने तो ऐसा कहा, मैं तो वहां गई, मैंने, फूलते रहते हैं। और दूसरे वो हैं जिन्होंने कोई काम किया भी नहीं है फिर भी उनको बस यही पसंद आता है कि लोग हमें बस बड़ा समझते रहे और बड़ी अच्छी हमारी बातें होती रहे, चर्चे हमारे अच्छे हों। और बाज लोग तो दीन का इल्म भी इसलिए लेते हैं कि हम लोगों में जरा इतराएं, लोगों में जरा, लोगों की नजरों में जरा नजर आए कि बड़ा नॉलेज है इसको, हम बातें ऐसी करें ताकि लोग भी कहें कि कितनी नेक है वैसे ना, ये कितनी नेकी की बातें करती है। अल्लाह अकबर। इसी तरह बाज लोग चीटिंग करके नंबर ले लेते हैं, उसके ऊपर उनकी तारीफें हो रही तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया, चीट किया बस, उस पे तारीफें सुन के खुश होते हैं। ये चीजें इंसान को कामयाब नहीं करा सकती। अलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, सारा क्रेडिट तो उसके लिए है, वो जिसके लिए बादशाहत है आसमानों और जमीन की। तुम तो ना करके भी चाहते तुम्हारे लिए क्रेडिट हो, सारा क्रेडिट हर चीज, अगर इंसान कुछ कर भी ले तो उसकी दीवी तौफीक से किया है। इसके बाद यही सोचना चाहिए कि सारी तारीफ तो उस अल्लाह के लिए है जो जमीनों आसमान की बादशाहत का मालिक है और जो आला कुल्ली शैइन कदीर है, कुदरत रखता है हर चीज के ऊपर, कोई चीज उसको आजिज नहीं कर सकती, थका नहीं सकती किसी चीज के लिए, वो ये नहीं है कि वो नामुमकिन हो उसके लिए। अब यहां तक मुकम्मल हो गई ये आयतें, और जो नेक्स्ट रुकू शुरू हो रहा है ये इतना अहम रुकू है इसलिए कि इस रुकू की अपनी फजीलत है। हदीस मुबारक से साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद के लिए जब उठते थे, तब ये आले इमरान की ये जो आगे 190 से लेके 200 तक ये 11 आयतें बनती हैं, ये तिलावत फरमाते थे। और बुखारी में भी आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैं अपनी खाला मैमूना रजी अल्लाह तआला के घर मैंने रात गुजारी, अनहुमा के घर रात गुजारी, तो वो उम्मुल मोमिनीन है। तो जब रात हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, थोड़ी देर तक हज़रत मैमूना से बातें करते रहे, फिर सो गए। जब रात का लास्ट 1/3 बाकी रह गया तो आप उठ बैठे और आसमान की तरफ निगाह करके ये इन्ना फी खल्क समावाती ये 11 आयतें आखिर तक पढ़ी, फिर खड़े हुए मिसवाक की वजू किया और फिर आपने अपनी तहज्जुद पढ़ी हत्ता के सुबह हो गई, फजर की अजान हो गई। तो इससे हमें थोड़ा सा पता भी चलता है कि ये आयतें यानी उठते ही बिस्तर से ये आयतें पढ़नी चाहिए, ये सुन्नत है तहज्जुद के वक्त। तो जो तहज्जुद पढ़ने वाले हैं वो इन आयतों को याद कर लें ताकि उस वक्त ये सुन्नत भी पूरी हो जाए। और भी एक बड़ी अहम इस बारे में इन आयात की जो शान नज़ूल है इस बारे में हमें रिवायत मिलती है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इब्ने उमर ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात बताएं, तो वो रो पड़ी, फरमाने लगी नबी अलैहिस्सलाम के तो तमाम काम ही अजीब तरह है, यानी आपकी वफ़ात के बाद। तो अच्छा मैं एक वाक्या सुनाती हूँ, एक दफ़ा मेरी बारी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ थे, सोए हुए थे, फिर मुझसे फरमाने लगे आयशा मैं अपने रब की कुछ इबादत करना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह की कसम मैं आपका कुर्ब चाहती हूँ और ये भी मेरी चाहत है कि आप अल्लाह की इबादत भी करें। तो अब आप खड़े हुए और एक मश्क लेदर बैग होता है ना उसमें से पानी लेके आपने हल्का सा वुजू किया, नमाज के लिए खड़े हो गए, फिर जो रोना शुरू किया, इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई, भीग गई दाढ़ी, फिर सजदे में गए और इतना रोए कि जमीन तर हो गई, फिर करवट के बल लेट गए और रोते रहे, यहाँ तक कि हजरत बिलाल ने आके नमाज के लिए बुलाया, यानी फजर की अजान के वक्त के हो गया, और आपके आंसू जारी थे। तो आपके आंसू देख के उन्होंने पूछा ए अल्लाह के सच्चे रसूल आप क्यों रो रहे हैं, अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। आपने फरमाया बिलाल मैं क्यों ना रो, मुझ पे आज की रात ये आयतें उतरी हैं, अफसोस है उस आदमी पे जो इसको पढ़े फिर भी इनमें गौर व फिक्र ना करे। सुभान अल्लाह, कि जो इनको पढ़े और फिर भी इनमें गौर व फिक्र ना करे, अफसोस है ऐसे इंसान के ऊपर। तो ये वो आयतें हैं जो गौर व फिक्र करने वाली हैं। और आप देखें टाइमिंग भी कैसी है, टाइमिंग है जब तहज्जुद का टाइम होगा तो उस वक्त कुछ सोचे ना कि जहन बिल्कुल खाली है, आप उठे हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई चीज़ नहीं आपके इर्द गिर्द ऐसी हो रही कि जो आपको मतलब अपनी तरफ मुतवज्जे करे, उस वक्त वाकई गौर व फिक्र करना आसान होता है। अल्लाह ताला वो भेद खोलता है इंसान के ऊपर जो दिन में नहीं इंसान उस तरह सोच सकता। तो देखते हैं आयात, इन्ना फी खल्क समावाति वल अर्द, बेशक इस इख्तलाफ में आसमानों के सॉरी खल्क में पैदाइश में आसमानों की और जमीन की, और वख्तिलाफ लैली वन नहार, और इख्तलाफ में एक के बाद एक आने जाने में रात के और दिन के, ला आयातिल उलिल अलबाब, इनमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए। अब पता चलेगा अकल वाले कितने हैं हम में, क्योंकि इनमें तो अकल वालों के लिए निशानियां। अब देखें आयत क्या होती है, आयत निशानी, आयात उसकी जमा, एक नहीं बहुत सारी निशानियां। तो आयत क्या करती है, निशानी क्या करती है, आप जब हाईवे पे जा रहे होते हैं तो वहां पे भी आयत है ना, इसका इंग्लिश में अगर इसका वो करें ट्रांसलेशन तो साइन, तो साइंस लगे होते हैं ना, साइन क्या बता रहे होते हैं आपको, वो निशान होते हैं आपको बताते हैं साइंस कि रास्ता ये इस तरफ का है, ये इस तरफ का है, वो साइंस है ना, आपको रास्ते का पता बताते हैं। इसी तरह ये आयात ये निशानियां किसकी निशानियां, अल्लाह की निशानियां, यानी ये अल्लाह का पता बताती हैं। ये अल्लाह की तरफ पॉइंट करती हैं। साइंस होते हैं ऐसे, एरो जा रहा होता है इधर को राइट, कभी लेफ्ट, कभी नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, तो ये निशानियां भी पॉइंट कर रही हैं, ये भी एरोज हैं, ये भी साइंस हैं अल्लाह की तरफ को, ये बता रहे होते हैं आपको उसका पता। तो हम तो निशानी समझते हैं कोई बहुत ही खूबसूरत ही चीज देखें, कोई बहुत ही अनोखी सी चीज देख लें, तो फिर हम कहते हैं ओ वाह ये क्या निशानी है, ये तो को वाकई इससे अल्लाह हमें याद आ गए। चलो अगर हम बहुत ही कोई सोचने वाले हो, लेकिन अल्लाह ताला तो कहता है ये दिन और रात के आने जाने में और आसमान और जमीन में भी तुम्हारे लिए निशानी है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इससे खाली हो कि उसमें कोई निशानी हो। क्योंकि हजरत सुलेमान दौरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, घर से निकल के जिस चीज पर मेरी नजर पड़ती है मैं देखता हूं कि इसमें अल्लाह की एक निशानी मौजूद है, उसमें मेरे लिए एक नेमत है और मेरे लिए बाइस इबरत है। यानी हर चीज में निशानी है, कोई चीज फालतू नहीं है इस कारखाने कुदरत में। जब जमीन और आसमान में निशानी है, आसमान कितना बड़ा है, इसके आज तक भेद जो है इंसान नहीं जान सका। मैंने कुछ फैक्ट्स, क्योंकि मेरा तो ये बहुत ही महबूब सब्जेक्ट है ना, तो मैंने आपके लिए कुछ इसके फैक्ट्स निकाले हैं इस कायनात के ऊपर। आसमान से मतलब क्या है, ये जो कायनात है आसमान, जस्ट डजंट मीन के ये जो ब्लू स्काई आप देख रहे हैं ये आसमान है, नहीं, आसमान मीन्स आसमान इससे है कि बुलंदी से, तो ये बुलंदी के अंदर जितना कुछ है, चाहे वो बादल हैं, सितारे हैं, सैारे हैं, उतने ही आसमान है, पूरी हमारी कायनात जिसको कहते हैं हमारी गैलेक्सी है। एक सूरज के बारे में मैंने ये तहकीक निकाली, सिर्फ एक सूरज जिसको हम बहुत बड़ा सितारा समझते हैं और रोज देखते हैं, और वो आसमान में हम देख रहे हैं कि वो चल रहा है और हम इसको उसका मुशाहिदा करते हैं। हमारी जो जमीन है 1.3 मिलियन जमीनें जमा हो जाएं तो तब एक सूरज बनेगा, यानी 13 लाख जमीनों को आप जमा करेंगे तब सूरज बनेगा। और सूरज सोचिए कितना बड़ा है, हमारे लिए तो जमीन ही बहुत बड़ी लगती है, 13 लाख जमीनें जमा हो तो एक सूरज बने, सुभान अल्लाह। और ये हमारा सूरज जो है ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत बड़े बड़े सितारे हैं, 100 टाइम्स बड़े सितारे मौजूद हैं इस कायनात में। एक सितारा इतना बड़ा है कि वो हमारे सूरज जो है वो 9.3 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन सूरज हमारे जमा हो जाए तो वो एक सितारा बनता है। ओ सुभान अल्लाह, और वो हमसे 5,000 लाइट ईयर्स दूर है। यानी लाइट ईयर कितना होता है आपको पता है, सबसे तेज रफ्तार क्या चीज है दुनिया के अंदर, लाइट। ओके, सबसे तेज रफ्तार यानी 1 सेकंड के अंदर लाइट जो है ना हमारी जमीन के 8 चक्कर लगा ले, इतनी ज्यादा स्पीड है लाइट की। और ये लाइट ट्रेवल करे अपनी स्पीड पे कितनी तेज है ये सोचें। अब मैंने इससे ही आपको बताया, तो 5,000 लाइट ईयर्स लगेंगे इसको इस जमीन से वहां उस सितारे तक पहुंचने में, 5,000 लाइट ईयर्स, वो इतनी दूर है वो सितारा। तो अल्लाह की कायनात कितनी वसी है, मैं सिर्फ आपको बताना ये चाहती, क्योंकि मुझे इसलिए ये बहुत सब्जेक्ट अपील करता है, इससे मुझे अल्लाह की पहचान आती है कि अल्लाह तू कितना बड़ा होगा, तेरी कुदरत कितनी है, और तू कितना इल्म वाला है, और तू कितना बुलंद है जो इतनी कायनात को चला रहा है। फिर आप देखें टेम्परेचर कितना है हमारे सूरज का, सिर्फ उसकी सतह का टेम्परेचर 10,000 फ़ारेनहाइट है, और हम यहाँ पे के 100 डिग्री होता है ना तो हम उसके ऊपर परेशान हो जाते हैं कि 100 डिग्रीज है आज टेम्परेचर, जी बहुत गर्मी है, जी बहुत गर्मी है। 10,000 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट उसकी सरफेस पे है, और उसके कोर में, सूरज के कोर में कितना टेम्परेचर है, 27 मिलियन फ़ारेनहाइट है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर। फिर आपको पता है ये हमारी जमीन भी चल रही है, सितारे सैारे सब चल रहे हैं। अब ये हम सोचते हैं हमारी जमीन ही घूम रही है सूरज के गिर्द, नहीं, सूरज भी घूम रहा है, सूरज अपनी गैलेक्सी में घूम रहा है, पता नहीं उसको उर्दू में क्या कहते हैं, गैलेक्सी को कायनात शायद कहते होंगे, तो उसमें उसके गिर्द भी चक्कर लगाता है सूरज जो है। सुभान अल्लाह, सूरज एक चक्कर पता है कितनी देर में लगाता है, हैरान हूँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह हु अकबर, 250 मिलियन ईयर्स उसको लगते हैं एक चक्कर लगाने में, सुभान अल्लाह, अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर। तो छोटी सी बातें आपके सामने मैंने रखी हैं। हाँ जी, कहकशां, गैलेक्सी कहकशां कहते हैं उसको उर्दू में। तो सूरज अपनी कहकशां में, ये सिर्फ एक हमारी गैलेक्सी नहीं है, बेशुमार गैलेक्सीज हैं। ये कितनी बड़ी होगी कि सूरज इसके गिर्द इतनी स्पीड में चल रहा है, फिर भी इसको 250 मिलियन ईयर्स लगेंगे। अल्लाह हू अकबर। और जमीन की, जमीन के भेद, ये तो जमीन पे रहते हुए इंसान नहीं जान सका जमीन के भेद, जमीन के राज नहीं वो जान सका आज तक, कि क्या ऊपर से खुदाई करो तो पानी निकलता है, कोर है उसका तो उसके अंदर लावा है, ये क्या चीज है। आप जमीन के अंदर गौर व फिक्र शुरू कर दें, यहाँ के चरिंद परिंद पौधे, यहाँ के पहाड़, यहाँ के पानी, यहाँ के समंदर, इन चीजों पे गौर करना शुरू करें तो आप सोचेंगे जिंदगी गुजर जाएगी। आप एक चीज के ऊपर पूरी रिसर्च नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने कहा इसमें निशानियां हो, तुम और क्या चाहते हो, तुम निशानियां मांगते हो। काफिर कहते थे कोई निशानी दिखाएं, मूसा अलैहि सलाम के मोजे इतने लेकर आए थे, ये लेकर आए थे, वो हाथ निकालते थे, ऐसे होता था, वो करते थे, और ईसा अलैहि सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, कोढ़ी को अच्छा कर देते थे, अंधे को बीना कर देते, तो आपके पास क्या निशानी, आप हमें दिखाएं ना, सफा पहाड़ को सोने का बना के दिखाएं हमें। अल्लाह ताला ने कहा तो निशानियां मांगते हो, बेवकूफ हो, ये कस्समावाती वल अर्ध के अंदर निशानी नहीं तुम्हें नजर आती, इस इख्तलाफ लैली व नहार में निशानी नहीं नजर आती, तुम मोजे मांगते हो, ये मोजों से कम है। लेकिन चूंकि ये दिन और रात आते जाते रहते हैं, हमें क्या इनको, ये को तो हमें लगते ही नहीं, ये रात और दिन रुक जाए ना, रात आए, ये दिन ही दिन रहे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना, अगर अल्लाह तुम्हारे पर दिन ही कर दे सरमदा, तो कौन होगा जो तुम्हारे लिए रात लेकर आए, और अल्लाह तुम्हारे पर रात तारी कर दे, ले आओ अपने सारे 21st सेंचुरी के जो तुम्हारे पास चीजें हैं ना, जितनी टेक्नोलॉजियां, जितने तुम्हारे पास सैटेलाइट्स, जितनी पता नहीं क्या क्या तुमने कहा वह हमने बना लिया वह, तुम रात ला के दिखा दो, या दिन हो रात है तो दिन निकाल के दिखा दो, और तुम तो एक कोरोना का नहीं मुकाबला कर सके, तुम क्या दिन और रात की बातें करें। हम तो क्या, इंसान को तो अल्लाह ने ऐसा आजिज करके दिखा दिया ना, और अल्लाह अपनी निशानियां दिखाता रहता है इसी दुनिया में, दिखाता है इंसान, पहचान अल्लाह को, पहचान ले तो ये भी नहीं देख के पहचानता, ये सारा क्या, ये इल्म क्या है, ये एस्ट्रोनॉमी क्या है, ये रात दिन का आना जाना क्या है, ये जमीन के ऊपर जितनी निशानियां, कोई बायोलॉजी है, कोई जूलॉजी है, कोई केमिस्ट्री है, कोई फिजिक्स है, ये सब वही है ना, कोई मैथमेटिक्स है, ये सब वही है ना। तो ये उलूम जो होते हैं, ये उलूम काफिर या इस्लामी नहीं होते, पढ़ने वाला है जो अल्लाह की याद के साथ कोई इल्म पढ़ेगा तो वो इल्म मुसलमान इस्लामी इल्म हो गया, और कोई कुफर के साथ इसको पढ़ेगा तो काफिराना इल्म हो गया। तो इल्म नहीं काफरों वाला और इस्लामी होता, इल्म इल्म ही है, ये जो गौर व फिक्र इसमें करोगे तो ये तो इल्म है ना, ये तो साइंस पढ़नी है, तो ये तो खुद कुछ नहीं है। आप किस नजर से पढ़ते हो, इसी इल्म को लेकर बाज लोग दहरी हो जाते हैं, नहीं अल्लाह को मानते, और इसी इल्म को लेकर इंसान अल्लाह को पहचान जाता है कि वो रब कौन है। और आप देखें जब इंसान गौर व फिक्र करता है ना, तो फिर वो देखता है कि वो इसके अंदर क्या उसको नजर आता है, इसके अंदर उसको ये नजर आता है, अल्लाह तेरी कुदरत कितनी बड़ी है, अल्लाह तेरा इल्म कितना बड़ा है, अल्लाह तेरी तौहीद कामिल है, तू एक ही अकेला है, वरना तो ये चल ही नहीं सकता। यानी जब आप गौर व फिक्र करते हो, कोई एक बात नहीं समझ आती, उसका ईमान बढ़ जाता है, उसको पता चलता है अल्लाह के पास कितनी हिकमत है, कितनी प्रिसीजन है, कितना वो हुसन को पसंद करता है, कैसी खूबसूरती उसने बनाई हुई, कितनी परफेक्शन बनाई हुई, यानी ये जो मखलूक है ना, अल्लाह का तारुफ है। इसीलिए अल्लाह में गौर व फिक्र नहीं करना, मखलूक में करना है, खालिक में नहीं करना, तुम उसको नहीं पहचान सकते। हाँ, मखलूक में गौर व फिक्र करो, तुम खालिक को पहचान जाओगे। ये सब साइंस हैं जो पॉइंट कर रहे हैं अल्लाह की तरफ, उसकी जात की तरफ, ये निशानियां हैं। और कितने ही लोग हैं जो इस जमीन के ऊपर चल रहे होते हैं और इन निशानियों को अपने पैरों तले रोंद रहे होते हैं और अल्लाह को नहीं पहचानते। कितने ही लोग हैं जो दिमाग रखते हैं लेकिन अल्लाह के बारे में नहीं उनको याद आती। कितनी आंखें हैं, वो हर चीज देखती हैं, अल्लाह को नहीं पहचानती। तो चाहे जंगल देख लें, सहरा देख लें, समंदर देख लें, अनाज देख लें, मेवे देख लें, खुशबुएं देख लें, कानें देख लें, जानदार देख लें, बेजान देख लें, अल्लाह की कुदरत की निशानियां ये आपको पॉइंट करेंगी अल्लाह की तरफ। दिन और रात का आना जाना, इनका बढ़ना कम होना, इनका कभी सर्द होना कभी गर्म होना, एक के बाद एक का आना, निशानियां हैं। कभी रात गम की है तो उसके बाद दिन रोशनी लेकर आ जाता है, चेंज आ जाती है। कभी रात खौफ की है तो दिन अमन वाला है। तो निशानियां इसके अंदर, लेकिन हर रात का दिन है और हर दिन के बाद भी रात आ जाया करती है, ये ना भूलना। थोड़ी निशानी है, गौर फिक्र करें तो इंसान गौर नहीं करता ना। और ये याद रखिए, ये गौर फिक्र करना ये दिमाग की इबादत है। ये जरूरी नहीं आप बोल के कर रहे हैं, मैं सोचती हूँ आपके मैं आसमान कैसा, नहीं, ये कोई बोलने की जरूरत नहीं। तन्हाई में बैठें और गौर फिक्र करें, सोचें, सोच फिर आपको, और अल्लाह की याद के साथ सोचें, अल्लाह की याद के बगैर नहीं। इसी वजह से मैं आपको कहती हूँ, जो लोग मेडिकल साइंस पढ़ते हैं या जो और उलूम पढ़ते हैं, वो अल्लाह की याद के साथ उनको पढ़ें तो उनकी अकलें हैरान रह जाएं कि अल्लाह ने ये एक इंसान का जिस्म भी क्या चीज बना दी, क्या चीज है ये इंसान का जिस्म, वो हैरान रह जाएं। एक एक चीज, एक एक ऑर्गन का जो फंक्शन है ना, वो आपको अल्लाह तक पहुंचा देता है। अगर इंसान सब कुछ खाता भी है पीता भी है, आप हम औरतों को ही देख लें, कितने हम खाने बनाती हैं, सारे एक के बाद एक मसाला डाल रही होती है, एक के बाद एक मसाला, कभी नहीं गोश्त धोते हुए सोचा अल्लाह ये कहाँ से आया, ये किधर, ये जानवर जिबा हुआ होगा, किधर से ये पहुंचा यहाँ तक, कहाँ का ये जानवर होगा, कहाँ दुकान पे पहुंचा, कहाँ इतने सारे गोश्त में से मेरे लिए ये आया, अल्लाह तूने इसमें इतनी लज्जत रख दी, इतनी इसके अंदर। अब वो आपके उस वक्त के लोगों को तो शायद ना पता हो, अब तो हमें पता है इसमें इतनी कार्ब है, इसमें इतनी प्रोटीन है, इसके अंदर ये फवाइद है, इसके अंदर ये सब कुछ पता है कितनी, मगर फिर भी गौर फिक्र नहीं है, उससे अल्लाह तक नहीं पहुंचते क्योंकि उस नजर से देखते ही नहीं है। ये मैं एक एक नमक डाल रही हूँ, मिर्च डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ, गरम मसाला डाल रही हूँ, जीरा, ये के सब चीजें क्या है, ये स्पाइसेस अल्लाह तूने हमारे लिए पैदा कर दी कि हमारी लज्जत का सामान हो जाए। डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, कभी हंडी पक के आगे खाया भी पिया भी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने तक की भी नहीं तौफीक हुई, खा पी के उठे और कहा बहुत पेट भर गया, बड़ा मजा आया, मगर वो मजा किसने दिया, वो टेस्ट बड्स किसने रखे जुबान के ऊपर, वो हजम करने की तौफीक किसने दे दी, किसने दांतों को चलने के लिए हुक्म दे दिया, किसने आंखें दे दी कि देख सकते हो कि क्या खा रहे हो, किसने हाथों को ताकत दे दी कि निवाला बना रहे हो, तो कुछ कहीं पे भी नहीं आ, रब याद आया। बाजार से चीज लाने से लेके पकाने से लेके खाने इसके बाद तक भी कभी रब नहीं याद आया, और फिर वो फुजला निकालते हो, अगर वो ना निकले तो वो भी एक बीमारी है, उसमें भी नहीं रब याद आता, उसकी भी दुआ है कि जब आप फारिग हो जाओ तो आप निकल के दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबानी अलादा, अल्लाह तो तेरे, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये तकलीफ मुझसे दूर कर दी। वरना आप कभी देखें कोई सफर पे जा रहे हो या कुछ है, बाथरूम ना मिले तो इंसान की हालत बुरी हो जाती है, वो कहता है कि हाय बाथरूम के लिए कोई रेस्ट एरिया आ जाए, मैं कहीं कड़ के बाथरूम चली जाऊं। तो कभी इंसान कितना लाचार हो जाता है, इंसान को तो वही बेबस कर देता है, लेकिन देखो इंसान सोचता नहीं, किसी चीज पे नहीं सोचता। कभी तो सोचो, कोई चीज तो तुम्हें अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करे। ये तो पूरी कायनात जो है ना, जितना कुछ हमारे इर्द गिर्द है और जो हमारी अपनी बॉडी है, ये सब में निशानियां हैं, सब में निशानियां हैं, मगर इंसान पहचाने, वो नजर लेकर आओ बस, वो सोच की आदत डालो तो हर एक चीज में आयत है। इब्ने कसीर ने ईसा अलैहिस्सलाम का एक कॉल نقل کی ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا بولنا اللہ کا ذکر ہو اور نصیحت ہو، اور جس کا چپ رہنا غور و فکر ہو، اور اس کا دیکھنا عبرت ہو اور تنبیہ ہو. تو لقمان حکیم کا قول ہے کہ تنہائی کی جو گوشہ نشینی ہے، یعنی تنہائی میں انسان جو رہتا ہے، جس قدر زیادہ ہو اسی قدر غور و فکر اور دور اندیشی کی عادت زیادہ ہوتی، اور جس قدر یہ بڑھ جائے اس قدر راستے انسان پر کھل جاتے ہیں جو اسے جنت میں پہنچا دیں گے. یعنی انسان غور و فکر کرے، کیونکہ ایک لمحے کا غور و فکر، حسن بصری فرماتے ہیں ایک لمحے کا بھی غور و فکر رات بھر کے قیام کرنے سے افضل ہے. کہ آپ ایک لمحہ غور و فکر تو کرو، کیونکہ جب آپ غور و فکر کر کے کچھ کہو گے نا، تو پھر وہ جو دل سے نکلے گا وہ ویسے تسبیح کرنے سے نہیں آتا. جو آپ غور و فکر کر کے سبحان اللہ کہتے ہیں نا، وہ ویسے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیحیں کرتے ہیں، ویسے نہیں ہوتا، سیم نہیں ہے. اسی لیے حضرت مغیث اسود مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے ہیں لوگوں قبرستان جایا کرو، ہر روز جایا کرو تاکہ تمہیں انجام کا خیال پیدا ہو، پھر اپنے دل میں اس منظر کو حاضر کیا کرو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، پھر ایک جماعت کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک جماعت جنت میں جا رہی ہے، اور اپنے دلوں کو اس حال میں حاضر کرو کہ میں وہاں پہ پریزنٹ ہوں، اپنے بدن کو وہاں پہ سوچو کہ میں وہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں، اور جان لو کہ جہنم کو اپنے سامنے تم دیکھ رہے، اس کے ہتھوڑوں کی، اس کی آگ کے، اس کے قید خانوں کو اپنے سامنے لے کر آؤ. اتنا فرماتے پھر دھاڑے مار مار کے رونے لگتے، یہاں تک بے ہوش ہو جاتے. یعنی وہ کتنا اپنی غور و فکر کتنا کرتے تھے، کتنی امیجینیشن اپنی کہاں تک لے کے جاتے تھے. اب کہتے ہیں ہم تو ڈر جاتے ہیں اس سے، نہ 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 یہ نہیں بات کرنی. کیوں نہیں؟ کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا یہ دیکھنا نہیں ہے؟ اس دن ضرور دیکھو گے تم، اس جہنم کے اوپر سے ضرور گزرنا پڑے گا، یہ ضرور لائی جائے گی حشر کے میدان. کیا دیکھنا نہیں ہے جب نفسی نفسی کی پکارے ہوں گی؟ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ کھنڈرات میں جاتے تھے، کسی ٹوٹے پھوٹے دروازے پہ کھڑے ہو کے حسرت افسوس کے ساتھ نا بڑی درد بھری آواز میں فرماتے تھے، اے اجڑے گھروں والے، اجڑے ہوئے گھروں، اے اجڑے ہوئے گھروں، تمہارے رہنے والے کہاں چلے گئے؟ تو غور و فکر صرف یہ نہیں ہوتا، غور و فکر یہ اپنے آپ کو اس دنیا سے ڈیٹیچ کرنے کے لیے بھی ایسا غور و فکر کرنا ضروری ہے. ڈیٹیچ کریں، اٹیچمنٹ ہماری ٹو مچ ہے اس دنیا کے ساتھ، ٹو مچ اٹیچمنٹ. تو جب ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں نا، او گھرو تمہارے رہنے والے کہاں گئے، پھر خود فرماتے سارے زمین کے نیچے چلے گئے، سارے فنا ہو گئے، صرف اللہ کی ایک ذات باقی ہے. اور یہ جب کائنات میں آپ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک کے، دیکھو کتنے آئے اور چلے گئے، اللہ وہی ہے، وہ چلا رہا ہے یہ سارا نظام اور وہ نہ چلائے. تو آج تو آپ کو سائنس اتنی اتنی کیلکولیشن بھی بتاتی کہ گریوٹی جو ہے وہ اتنی اگر زیادہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا، اور ارتھ میں گریوٹی اتنی کم ہوتی تو ہم اڑتے پھرتے. اگر سورج جس فورس سے پل کر رہا ہے اس ارتھ کو، اگر وہ تھوڑی زیادہ ہوتی تو یہ زمین جا کے اس کے اندر گر جاتی، اور اگر کم ہوتی تو زمین کہیں اور ہی روانہ ہو جاتی. یہ جو اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اپنے آربٹ میں، اس کی وجہ ہے. کتنی پریسیژن ہے اس میں، ایک ایک ڈیسیمل کے آگے تک بھی جو نمبر ہے وہ اتنا پریسائزڈ ہے، اتنا کیلکولیٹڈ ہے. وہ کسی علیم نے ہی کیلکولیٹ کیا ہوگا نا، کس نے بنایا؟ کوئی تو ذات ہوگی نا. ایک تو جب کوئی دیکھے گا ان میں غور و فکر کرے گا، وہ ایتھیسٹ کیسے رہ سکتا ہے؟ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی بھی نہیں ہے یہ سارا بنانے والا چلانے والا؟ وہ فزکس پڑھ رہے، تم کیمسٹری پڑھ رہے، تم بایولوجی پڑھ رہے، تمہیں نظر نہیں آتا کس نے یہ لاز بنائے، کس نے یہ کیمیکلز میں یہ تاثیریں بنائی؟ یہ فارمولے آج آپ یاد کر کر کے رٹ رٹ کے پریشان ہو جاتے ہیں، کیمسٹری کے اکویشنز حل کرنی مشکل ہو جاتی. کس نے یہ علم کہاں سے آیا؟ کوئی خبیر ہے نا یا نہیں؟ اللہ اکبر. وہ پھر بھی نا انسان اللہ کو پہچانے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. جانور کے پاس بھی دماغ ہوتا ہے، وہ بھی دماغ لے کے پھر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے. اس کے پاس بھی بکری کا آپ مغز کھاتے ہیں نا، ہے بھی اس کے پاس بھی دماغ ہے. تو اس کے دماغ میں اور ہمارے دماغ میں اگر وہ فرق ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے میں اور اس گائے بکری میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم نے اس دماغ سے سوچنا ہی نہیں ہے کبھی کچھ، اور اس دماغ سے ہم نے اسی کو نہ پہچانا
जिसने हमें ये सब कुछ दिया और इस कायनात को सजा दिया, हमारे लिए डेकोरेट किया हुआ है, हर तरफ डेकोरेशंस है। आप अपने घर को सजाते संवारते और उसके ऊपर फूले नहीं समाते, आप कायनात को तो देखो, हर तरफ डेकोरेशन। वो ये नजर तो लेकर आओ देखने की। तो अगर इस दिमाग ने यही ना सोचा, आपने हर चीज में सोच विचार कर दी मगर उस तक से अल्लाह तक ही ना पहुंचे। अगर कपड़ों का भी आपको शौक है तो सोचो ये रंग किसने बनाए, ये तो ये रंग भी लेकर आते हैं, ये जो जंगलों वगैरह के अंदर वो जो जो कलर्स होते हैं उनसे कॉपी करते हैं ये। और इन रंगों को देखने की इस आंख के अंदर ये ताकत किसने रखनी, तो कई लोग कलर ब्लाइंड होते हैं। ये मौजू इतना लंबा है मेरे ख्याल में, मैं इसमें लंबे ना जाऊं क्योंकि फिर मैं सारी क्लासेस में मेरी चली जाएगी और मैं नहीं आपको आगे पढ़ा सकूंगी। तो ये तो वो मौजू है कि बस छिड़ जाए तो फिर तो इस कपड़ों के शौकीनों इस तरह से भी देखा करो, जेवरों के शौकीनों इस तरह भी देखा करो कि ये सोने की कानी होंगी वहां पे, किसने ये सोना पैदा किया, कहाँ से ये निकला, कहाँ तक अल्लाह ने इसको पहुंचाया। ये डिजाइनिंग करने वाले अपने डिजाइन कहाँ से लाते हैं, कभी सोचा है आपने? ये कायनात से देख के लाते हैं। तो ईसा अलैहि सलाम का एक और कॉल है कि इब्ने आदम है ज़ईफ़ इंसान, जहां कहीं तू वो अल्लाह से डरता रहे, दुनिया में आजी और मिस्कीनी के साथ रहे, अकड़ के मत रहो, अपना घर मस्जिदों को बना लो, यानी मस्जिदों में बहुत आया जाया करो, अपनी आंखों को रोना सिखा लो, हंसने वाले आज बहुत हैं, अपनी आंखों को अल्लाह के लिए रुलाने वाले बहुत कम है, अपने जिस्म को सब्र की आदत सिखाओ, ये नहीं कि जरा सरा सी बात के ऊपर बवेला खड़ा कर देना, अपने दिल को गौर व फिक्र करने वाला बनाओ, ये सोचा करें इन चीजों पे। हमारे तो सोचे और कोई खत्म होंगी तो फिर हम ये सोचेंगे ना, हमें तो ये सोचे हैं कि कल का खाना कहाँ से आएगा, मेरी जॉब का क्या बनेगा, बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, वो पढ़ रहा है कि नहीं, वो ऐसे करना है कि नहीं, उसकी शादी का क्या होगा, ये उस पार्टी में जाना है क्या पहन के जाऊंगी, ये सोचे हैं। उन्होंने बड़े घर बना लिए, हमारा तो घर छोटा ही रह गया, ये हमारी सोचे हैं, तो गौर फिक्र के कब करेंगे, सोचे ये पीछा छोड़ेंगी तो हम कभी गौर फिक्र करेंगे ना। तो अपने दिल को गौर फिक्र करने वाला बनाओ, कल की रोजी की फिक्र आज ना करो, ये उन्होंने फरमाया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज एक दफा मजलिस में बैठे हुए थे, रो दिए। लोगों ने पूछा आप क्यों रोते हैं? फरमाया मैंने दुनिया में और इसकी लज्जतों में और इसकी ख्वाहिशात में गौर व फिक्र किया, मुझे बड़ी इबरत आई और मैं जब नतीजे पे पहुंचा ना, नतीजा क्या है सब चीज का, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो कहते हैं मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई, उमंगे खत्म हो गई,